चेतना शक्ति का प्रयोग अभीष्ट होगा। इसके लिए इन दिनों भी उच्च स्तरीय आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर से विशेष प्रयोग प्रदान कर रही है। सार्वजनिक प्रयोग के रूप में शांतिकुंज में युग संधि वेला में ऐसा ही एक महापुरुष चरण चला रहा है। यह शारदेय नवरात्र 1988 से आरंभ हुआ था और दिसंबर 2000 तक चलेगा। इसकी पूर्णाहुति भी अपने धर्म की अनोखी और विशालकाय होने की संभावना है। साधना विज्ञान में श्रद्धा रखने वाले शांतिकुंज के एक महीने एवं 9 दिन वाले सत्रों में सम्मिलित होने आते हैं और साथ ही इस युग संधि पुरुष चरण में भी भाग लेते रहते हैं। इन दिनों अणु आयुधों से उद्भूत रेडियोधर्मिता से कैसे जूझा जाए, इस संबंध में प्रसिद्ध दार्शनिक आर्थर कॉसल ने भी आध्यात्मिक उपचारों का आश्रय लेने की बात कही है। अपना अभिमत ब्लिट्स के संपादक श्री करजिया से हुई चर्चा में, जो प्रसिद्ध पत्रिका नवनीत मार्च 1983 में प्रकाशित हुआ था, व्यक्त करते हुए उन्हें कहा था कि अणु आयुधों से भी बढ़कर सामर्थ्य गायत्री मंत्र में है, जो सावित्री सविता महामंत्र है। वे कहते हैं कि जब विश्व के करोड़ों भारतीय गायत्री मंत्र का संवेत उच्चारण पुरस्चरण के रूप में करेंगे, तो इस अनुष्ठान से उत्पन्न ऊर्जा ब्रह्मांड में सूर्य को भेदने वाली मिसाइल का काम करेगी तथा भर से मिलकर आण्विक शक्ति को नष्ट कर देगी। प्राचीनकाल के ऋषियों की तरह अगले दिनों अपने समय के तत्वज्ञानी भी यह अनुभव करेंगे कि मानव प्रकृति में इस महत शक्ति के आधार पर आवश्यक परिष्कार, परिमार्जन एवं परिवर्तन संभव किए जा सकेंगे। सूर्य पुराण, अक्षयोपनिषद, आदित्य हृदय आदि से सूर्य की विशिष्ट क्षमताओं का उल्लेख और उसके ऐसे उपचारों का संकेत है जिनमें शरीर, मन एवं भाव संवेदनाओं को इस शक्ति से उच्च स्तरीय लाभ प्रदत्त किया जा सके। इन प्रतिपादनों के संबंध में अब ऐसी शोधें होंगी जिन्हें झुठलाया न जा सके, परीक्षण की कसौटियों पर जिन्हें सही सिद्ध किया जा सके। अगले दिनों सूर्य विज्ञान को प्रमुखता प्राप्त होगी और उनका न केवल पदार्थ शक्ति के रूप में प्रयोग होगा, वरन मानसोपचार के रूप में भी काम में लाया जा सकेगा। सूर्य नमस्कार, सूर्यभेदन प्राणायाम, सूर्योपस्थान आदि विधि उपचारों के असंदिग्ध परिणाम सभी के समक्ष हैं। इससे सूर्य की शक्ति पर विश्वास जमता है। जिन्हें इन प्रतिपादनों पर दृढ़ विश्वास हो, उनके लिए एक सार्वजनिक उपासना प्रावधान बनाया गया है। वह इस प्रकार है, ब्रह्म मुहूर्त में यथासंभव शरीर और मन से शुद्ध होकर नेत्र बंद करके प्रातःकालीन उदीयमान स्वर्णिम सविता का ध्यान करें। भावना करें कि स्वर्णिम सूर्य किरणें अपने शरीर में प्रवेश कर रही हैं और उसकी स्थिति चंद्रमा जैसी बन रही है। सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके चंद्रमा चमकता है और अपने शीतल प्रकाश से रात्रि में प्रकाश उत्पन्न करके वाला अमृत बरसाता है। समझना चाहिए कि ध्यान स्थिति में सूर्य किरणों का प्रवेश साधक के शरीर में हुआ और वह चंद्रमा की तरह अमृत ज्योति से भर गया। यह ज्योति संसार में बिखर कर अमृत ज्योति से भरा पूरा वातावरण बना रही है। उससे पदार्थ और प्राणी अनुप्राणित हो रहे हैं, उपयोगी वातावरण बन रहा है और अवांछनीयताएं विदा हो रही हैं। गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। जिन्हें गायत्री मंत्र पर श्रद्धा हो, वे उपरोक्त ध्यान के साथ गायत्री मंत्र मानसिक रूप से जपते रह सकते हैं। जिन्हें उसकी उपयोगिता गले न उतरती हो, वे मात्र सूर्य का काया में आवाहन और उसके कारण बनते चंद्रोपम शरीर से अमृत ज्योति वितरण का ध्यान मात्र करते रह सकते हैं। इसके लिए समय 15 मिनट रखा गया है ताकि वह नियम सभी से सद सके। एक ही भावना एक ही समय यदि लाखों करोड़ों लोग मिलजुलकर करें तो उस संयुक्त शक्ति के उद्भव से सूर्य का चेतना पक्ष मनुष्य समाज पर अधिक अनुग्रह बरसाएगा, ऐसी आशा की जा सकती है। महाकाल की संकल्पित संभावनाएं। मनुष्य की अपनी विचारणा, क्षमता, लगन, हिम्मत, उमंग और पुरुषार्थ परायणता की महत्ता भी कम नहीं। इन मानसिक विभूतियों के जुड़ जाने पर उसकी सामान्य दिखने वाली क्रिया प्रक्रिया भी असामान्य स्तर की बन जाती है और दैवी विभूतियों की समानता करने लगती है। फिर भी उनकी सीमा एवं समय निर्धारित है और सफलता का भी एक मापदंड है। किंतु यदि अदृश्य प्रगति प्रवाह की इच्छा शक्ति उसके साथ जुड़ जाए तो परिवर्तन इतनी तेजी से होते हैं कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। सहस्राब्दियों में बन पड़ने वाला काम दशाब्दियों में, वर्षों महीनों में संपन्न होने लगते हैं। यह अदृश्य उपक्रम अनायास ही नहीं, किसी विशेष योजना एवं प्रेरणा के अंतर्गत होता है। उसके पीछे अव्यवस्था को हटाकर व्यवस्था बनाने का लक्ष्य सन्निहित रहता है। आंधी तूफान आते हैं तो उड़ती हुई धूल के साथ मुद्दतों का जमा कचरा कहीं से कहीं पहुंच जाता है। खंदक भर जाते हैं और भूमि समतल बनने में इतनी फुर्ती दिखती है मानो जो करना है उसे कुछ ही क्षणों में कर गुजरे। रेगिस्तानी टीले पर्वत आज यहाँ तो कल वहाँ उड़कर पहुँचते प्रतीत होते हैं। घटाटोप बरसते हैं तो सुविस्तृत थल क्षेत्र जल ही जल से आपूरित दीख पड़ता है। अस्त व्यस्त झोपड़ों का पता भी नहीं चलता और बूढ़े वृक्ष तेजी से धराशायी होते चले जाते हैं। ऐसे ही न जाने क्या अजूबे सामने आ खड़े होते हैं जिनकी कुछ समय पहले तक कल्पना भी न थी। पिछले दिनों पर दृष्टिपात करें तो प्रतीत होता है कि सदियों पुरानी परंपराओं में आमूलचूल परिवर्तन होने जैसे घटनाक्रम विनिर्मित हुए हैं। भारत ने हजारों वर्ष पुरानी गुलामी का जुआ कुछ ही समय में हल्के फुल्के आंदोलन के सहारे उतार फेंका। भूपति कहे जाने वालों का अधिकार छिन गया और प्रजाजन कहे जाने वाले निरीह भूमिधर बन बैठे। दास दासियों का क्रय विक्रय और लूट अपहरण एक वैद्य व्यवसाय की तरह सुप्रचलित था, पर अब उसका कहीं अता पता भी नहीं दिखता। पतियों के शव जीवित पत्नियों रखेलों के साथ जलाए या गाड़े जाते थे, पर अब तो उस प्रथा को महिमा मंडित करना तक निषिद्ध है। अस्पृश्यता का पुराना स्वरूप कहीं भी दिख नहीं पड़ता। विज्ञान की उमंग उभरी तो 2-3 शताब्दियों में ही रेल, मोटर, जलयान, वायुयान, बिजली आदि ने धरती के कोने कोने में अपनी प्रभुता का परिचय देना आरंभ कर दिया। अंतरिक्ष में उपग्रह चक्कर काटने लगे। रेडियो टेलीविजन एक अच्छा खासा अजूबा है। राकेटों ने इतनी गति पकड़ ली है कि वे धरती के एक कोने से दूसरे पर जा पहुंचते हैं। रॉबोटों ने मानवीय श्रम का स्थानापन होने की घोषणा की है और कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की उपयोगिता को मुंह बिचकाकर चिढ़ाने लगे हैं। अणु आयुधों तक का कहना है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले बनी इस समृद्ध और सुंदर धरती को वे चाहें तो क्षण भर में धूली बनाकर अंतरिक्ष में अदृश्य कर सकते हैं। प्रगति की इस द्रुतगामिता पर हैरत से हतप्रभ होकर ही रह जाना पड़ता है। यह भूतकाल की विवेचना हुई। अब वर्तमान पर नजर डालें तो प्रतीत होता है कि 21वीं सदी के शुभ संभावनाएं हरी धूप की तरह अपनी उगती पत्तियों के दीख पड़ने के स्तर तक पहुंच रही हैं। प्रतिभा परिष्कार की सामयिक आवश्यकता लोगों द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपनाए जाने में आनाकानी करने पर भी वसंत ऋतु के पुष्प पल्लवों की तरह अनायास ही वह अपने वैभव का परिचय देती दिखती है। नस नस में भरी हुई कृपणता और लोभ लिप्सा पर न जाने कौन ऐसा अंकुश लगा रहा है, जैसे कि उन्मत्त हाथी पर कुशल महावतों द्वारा काबू पाया जाता है। भागीरथ की सप्त ऋषियों की, बुद्ध, शंकर, दयानंद, विवेकानंद, गांधी, विनोबा की कथाएं अब प्रत्यक्ष बनकर सामने आ सकेंगी या नहीं, इस शंका आशंका से आज जबकि हर कहीं निराशा बलवती होती दिख पड़ती है, इतने पर भी नियति की परिवर्तन प्रत्यावर्तन की क्षमता का समापन हो जाने जैसा विश्वास नहीं किया जा सकता। महाकाल की हुंकारें जो दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित कर रही हैं, उन्हें अनसुनी कैसे किया जाए? युग चेतना के प्रभात पर्व पर उदीयमान सविता के आलोक को किस प्रकार भुलाया जाए? युग अवतरण की संभावना गंगावतरण की तरह अद्भुत तो है, पर साथ ही इस तथ्य से भी इनकार कैसे किया जाए कि जो कभी चरितार्थ हो चुका है वह फिर अपनी पुनरावृत्ति करने में असमर्थ ही रह जाएगा। युग संधि की वर्तमान वेला ऐसी ही उथल पुथलों से भरी हुई है। मई 89 में ग्राम पंचायतों को विशेष अधिकार देने की बात अचानक बन गई थी। ग्रामीण स्वराज्य गांधी जी के आरंभिक दिनों का सपना था। उस पर चर्चाएं होती रहीं, परियोजनाएं भी बनती रहीं, पर यह किसी को भी भरोसा न था कि 89 में कुछ माह में ही इस संदर्भ में क्रांतिकारी परिवर्तन इतनी सरलता से हो गुजरेंगे। राज्य परिवर्तन खून खराबे के बिना, आक्रोश विद्रोह उभरे बिना कहां होते हैं। पर समर्थ हाथों से छिनकर सत्ता निर्धनों के पिछड़ों के हाथों इतनी आसानी से चली जाएगी, यह बात मानव गले के नीचे उतरती नहीं। फिर भी वह यदि संभव हो जाता है तो उससे इनकार कैसे किया जा सकता है? पिछड़ों का संकल्प के स्तर तक पहुंचना असाधारण रूप से समय साध्य और कष्ट साध्य माना जाता है। फिर भी पिछड़ों को, अशिक्षितों को, दमित महिलाओं को इतना आरक्षण मिलना कि उन्हीं का बहुमत बन पड़े, इस तथ्य के सही होते हुए भी समझ यह स्वीकार नहीं करती कि यह सब इतनी जल्दी और इतनी सरलता के साथ संपन्न हो जाएगा। इसे मानवीय अंतराल का उफान या महाकाल का विधान कुछ भी कहा जाए, जो असंभव होते हुए भी संभव होने जा रहा है। इस एक उफान के बाद परिवर्तन की घुड़दौड़ समाप्त हो जाएगी, ऐसा कुछ किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। दूरदर्शी आंखें देख सकती हैं कि इसके बाद ही नई घटा की तरह सहकारी आंदोलन पनपेगा और भ्रष्टाचार की ठेकेदारी अपना रास्ता नापती दिखेगी। कहा जाता है कि बिचौलिए 94% डकार जाते हैं और उपभोक्ता के पल्ले मात्र 6% पड़ पाता है। इतने बड़े व्यवधान से निपटना किस बलबूते पर संभव हो? जिनकी दाढ़ में खून का चस्का लगा है उन्हें किस प्रकार विरत होने के लिए सहमत किया जा सकेगा? इसका उत्तर एक ही है, घोड़े के मुंह में लगाई जाने वाली लगाम, ऊंट की नाक में डाली जाने वाली नकेल, हाथी को सीधी राह चलाने वाले अंकुश की तरह जब सहकारिता के आधार पर अर्थव्यवस्था चलेगी तो वह अंधेरगर्दी कहां पैर टिकाए रह सकेगी जो प्रगति योजनाओं को निगल निगल कर मगर की तरह मोटी होती चली जाती हैं। राज्य क्रांति में पंचायत राज्य के दूरगामी परिणाम को देखते हुए उसे अभूतपूर्व कहा जा सकता है। इसके पीछे पीछे सटकर चली आ रही सहकारिता क्रांति है, जिसके सही रूप में चरितार्थ होते ही धन को मध्यस्थों द्वारा हड़प लिए जाने की संभावना लुंचपुंच होकर रह जाएगी, भले ही उसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त होने में कुछ देर लगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा गले की हड्डी की तरह अटकी हुई है। जिनके हाथों में इन दिनों समाज की बागडोर है वे अशिक्षित रहकर अनगढ़ बने रहें, यह कितने बड़े दुख की बात है। सरकारी धन से इतनी बड़ी व्यवस्था की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, विशेषतया तब जबकि पढ़ने वालों में विद्या अर्जन के लिए अभिरुचि ही न हो। इस समस्या का हल अगले दिनों इस प्रकार निकलेगा कि शिक्षितों को अपने समीप के अशिक्षितों में से एक दो को साक्षर बनाने के लिए बाधित होना पड़ेगा। हराम की कमाई खाने वालों को जब अपराधी माना जाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा तथा दूसरी ओर श्रमशीलों को पुण्यात्मा मानकर उन्हें मान महत्व दिया जाएगा, तो उस माहौल में उन अपराधियों का पत्ता साफ हो जाएगा जो जिस तिस बहाने समय तो काटते हैं पर उपार्जन में अभिवर्धन में योगदान तनिक भी नहीं देते। पाखंडी, अनाचारी, निठल्ले प्राय इन्हीं लबादों को उड़े अपनी चमड़ी बचाते रहते हैं। परिश्रम की कमाई को ही ग्राह्य समझा जाएगा तो फिर दहेज प्रथा, प्रदर्शन, अपव्यय, अहंकार जैसी अनेक अव्यवस्थाओं की जड़ें कट जाएंगी। कुर्सी में शान ढूंढने वाले तब हथौड़ा फावड़ा चला रहे होंगे, बूढ़े भी अपने ढंग से इतना कुछ करने लगेंगे जिससे उन्हें अपमान न सहना पड़े वरन किसी न किसी उपयोगी उत्पादन में अपने को खपाकर अधिक स्वस्थ, अधिक प्रसन्न और अधिक सम्मानित अनुभव कर सकेंगे। चोरों में कामचोर तब सबसे बुरी श्रेणी में गिने जाने लगेंगे। यह क्रांतियां रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह एक के पीछे एक दौड़ती चली आ रही हैं। उनका द्रुतागति से पटरी पर दौड़ना हर आंख वाले को दृष्टिगोचर होगा। अवांछनीय लालच से छुटकारा पाकर औसत नागरिक स्तर का निर्वाह स्वीकार करने वालों के पास इतना श्रम, समय, मानस और वैभव बचा रहेगा जिसे नवसृजन के लिए नियोजित करने पर 21वीं सदी के साथ जुड़ी हुई सुखद संभावनाओं को फलित होते इन्हीं दिनों इन्हीं आंखों से प्रत्यक्ष देखा जा सकेगा। नियति की अभिलाषा है कि मनुष्यों में से अधिकांश प्रतिभावान उभरें, अपने चरित्र और कर्तृत्व से अनेक को अनुकरण की प्रबल प्रेरणाएं प्रदान करें। यह कुछ ही संकेत हैं जो युग संधि के इन 12 वर्षों में अंकुर से बढ़कर छायादार वृक्ष की तरह शुभायमान दिख सकेंगे। यह आरंभिक और अनिवार्य संभावनाओं के संकेत हैं। इनके सहारे उन समस्याओं का भार अगले ही दिनों हल्का हो जाएगा जो विनाशकारी विभीषिकाओं की तरह गर्जन तर्जन करती दिख पड़ती हैं। इतना बन पड़ने से भी उस उद्यान को पल्लवित होने का अवसर मिल जाएगा जिस पर अगले दिनों ब्रह्मकमल जैसे पुष्प खिलने और अम्रफल जैसे वरदान उभरने वाले हैं। हम में से प्रत्येक को गिरह बांध रखनी चाहिए कि नवयुग का भवन बन रहा है, वह बनकर रहेगा। स्मरण रखा जाना चाहिए कि अगला समय उज्ज्वल भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, जो इसमें अवरोध बनकर अड़ेंगे वे मात्र दुर्गति ही सहन करेंगे। विश्वात्मा ने, परमात्मा ने नवसृजन के संकल्प कर लिए हैं, इनके पूर्ण होकर रहने में संदेह नहीं किया जाना चाहिए। 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य का उद्घोष मात्र नारा नहीं है, इसके पीछे महाकाल का प्रचंड संकल्प सन्निहित है। उसको चरितार्थ होते हुए प्रतिभा परिष्कार के रूप में देखा जा सकेगा। अगले दिनों इस कोयले की खदान में ही बहुमूल्य मणिमुक्तक उभरते और चमकते दिखाई देंगे। परिवर्तन प्रक्रिया का सार संक्षेप। 19वीं शताब्दी से आरंभ होकर 20वीं सदी के अंतिम चरण तक कालचक्र अत्यंत द्रुतागति से घूमा है। जितना भला बुरा पिछले हजारों वर्षों में नहीं बन पड़ा वह इस अवधि में हो चला। प्रगति के नाम पर असाधारण महत्व के आविष्कार, बुद्धि तीक्ष्णता के पक्षधर, प्रतिपादन, शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में नए निर्धारण, विशालकाय कल कारखाने इन्हीं दिनों लगे हैं। युद्ध सामग्री का उत्पादन एक नया व्यवसाय बनकर उभरा है। अंतरिक्ष को खोज डालना इसी समय की उपलब्धि है। अनेक राज्य क्रांतियां हुई हैं। भारत समेत अनेक देशों को प्राप्त स्वतंत्रता आदि अनेक उपलब्धियों की गणना इस क्रम में हो सकती है। 20वीं सदी में अवगति के नाम पर भी ऐसा कम नहीं हुआ जिसे खेदजनक न कहा जा सके। दो विश्व युद्ध इन्हीं दिनों हुए, जापान पर अणुबम गिराए गए। छोटे छोटे लगभग 100 युद्ध इसी बीच लड़े गए। नशेबाजी चरम सीमा तक पहुंची, व्यभिचार पाप न रहकर एक सामान्य लोकाचार जैसा बन गया जिससे पारिवारिक सघनता को भारी चोट पहुंची। जनसंख्या असाधारण रूप से बढ़ी, असंयम और अनाचार फैशन बन गया। प्रकृति प्रकोपों ने कीर्तिमान बनाया, कुरीतियों और मूल मान्यताओं ने सभ्य और असभ्य सभी को एक लकड़ी से हांका। अनौचित्य को रोकने और विकास उपक्रमों को बढ़ाने के लिए भी कुछ होता रहा पर वह विशिष्ट प्रगति करने और अवगति पर औचित्य का अंकुश लगाने में यत्किंचित ही सफल हुआ। राष्ट्रसंघ से लेकर सरकारों के विकास कार्य और संस्थाओं के सुधार क्रम इतने सफल न हो सके जिसे कालचक्र की गतिशीलता पर संतुलन बिठा पाने का श्रेय मिल सके। कुल मिलाकर 20वीं सदी घाटे की रही, उसमें बना कम बिगड़ा ज्यादा। इस संभावना को भविष्यवक्ता और दूरदर्शी पहले से भी बताते और चेतावनी देते रहे थे। ईसाई मान्यता वाला 7 टाइम्स, इस्लाम मान्यता की 14वीं सदी, भविष्य पुराण की विनाश विकृति आदि को मिलाकर देखा जाए तो प्रतीत होता है कि विभीषिकाओं की आशंका अपनी विकरालता ही दिखाती रही। कालचक्र का क्रम ऐसा है कि नीचे से ऊपर की ओर चलकर गोलाई बनाता है। 20वीं सदी की क्षतिपूर्ति 21वीं सदी में होगी, इसमें विकास उभरेगा और विनाश की खाई पड़ती जाएगी। इसलिए 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य का उद्घोष उजली परिस्थितियों का परिचायक ही माना जा सकता है। इस तथ्य की पुष्टि में अनेक दिव्यदर्शियों, आकलनकर्ताओं तथा पाश्चात्य प्रतिभाओं ने एक स्वर से समर्थन किया है। हमें आशा करनी चाहिए कि अगली शताब्दी नया माहौल लेकर आएगी। रात्रि की विदाई और प्रभात के आगमन को मध्यांतर संधि वेला कहा जाता है। उषाकाल, ब्रह्म मुहूर्त जैसे नाम उस समय को दिए जाते हैं। युग संधि के संबंध में मान्यता है कि वह 20वीं सदी के अंतिम 12 वर्षों में ही होनी है। सन 1989 से 2000 तक के 12 वर्ष इसी स्तर के माने जा रहे हैं। इसकी तुलना सर्दी और गर्मी के बीच आने वाले वसंत से अथवा गर्मी और सर्दी के मध्यवर्ती वर्षाकाल से की जा सकती है। इस अवधि में गलाई और ढलाई की दोनों परस्पर विरोधी दिखने वाली क्रिया प्रक्रिया चलती दिखाई देगी। अवांछनीयता के उन्मूलन वाला उत्साह उभरेगा और नवसृजन के भव्य प्रवाह का आगमन दिख पड़ेगा। संध्याकाल का महत्व असाधारण माना गया है। धान्यों की मध्यवर्ती नोक ही उपजाव होती है। गाड़ी के दो पहियों को चलाने में मध्यवर्ती धुरी की ही प्रमुख भूमिका होती है। भोर होते ही घर घर में बुहारी लगती है और कुछ पकाने के लिए चूल्हा गर्म किया जाता है। यह दोनों ही प्रयोग युग संधि के मध्यांतर में नए सिरे से नए उत्साह से कार्यान्वित होते दिख पड़ेंगे। इन दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए प्रखर प्रतिभाएं सृजन शिल्पी के रूप में उभरेंगी और ऐसे पराक्रम प्रस्तुत करेंगी जिन्हें असाधारण की संज्ञा मिलेगी। हर काम मध्य गति से तो सदा सर्वदा चलता ही रहता है, पर विशेष समय में विशेष रूप से सुहावना होता है। अरुणोदयकाल में चिड़ियों को फुदकते, कलियों को खिलते, मंदिरों में शंख बजते, ध्यान होते एवं हर क्षेत्र में नए सिरे से नई हलचल को उभरते देखा जाता है। प्राणवान कर्मयोगी उग्र सिद्धि के इन दिनों में अपने में नई उमंगें उभरती देखेंगे। वे संघर्ष एवं सृजन के दोनों कार्यों में अपने पुरुषार्थ का हनुमान एवं अगध जैसा परिचय देंगे। उनने लंका दमन रामराज्य के सत्ययुग के सृजन में अपने को पूरी तरह खपाया था। इन भावनाओं से अनुप्राणित असंख्यों को देखा जा सकेगा। रीछ वानर गीध गिलहरी केवट शबरी जैसे अल्पशक्ति वालों की भी भूमिका देखने योग्य होगी। प्रखर प्रतिभाएं तो युग सृजेताओं जैसी ऐतिहासिक भूमिका संपन्न करेंगी। युग संधि के 12 वर्षों में यह उत्साह उभरता उछलता दिखाई दे रहा है। स्वार्थों में कटौती और परमार्थ अपनाने के लिए हर प्राणवान में प्रतिस्पर्धा ठनेगी। शुभ के आगमन और अशुभ के पलायन के चिन्ह युग संधि के दिनों में ही अंकुरित होने लगेंगे। 21वीं सदी में नवयुग का वटवृक्ष बढ़ता परिपक्व होता जाएगा और कुछ ही वर्षों में इतना प्रौढ़ हो जाएगा कि भूतकाल से तुलना करने वाले उस ख्याति को एक स्वर से नवयुग कह सकें। नवयुग समुद्र मंथन जैसा होगा, उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप 14 रत्न निकलेंगे। विज्ञान का दैत्य और अध्यात्म का देव दोनों ही पक्ष मिलकर समुद्र मंथन की भूमिका संपन्न करेंगे। प्रकृति मंद्राचल पर्वत जैसी मथनी का काम करेगी, मानवीय उत्साह वासुकी सर्प जैसी भूमिका संपन्न करेगा। दिव्य प्रेरणा का अदृश्य सहयोग कर्मावतार की तरह इन सब का भार अपनी पीठ पर धारण किए हुए होगा। राजशक्ति बुद्धिशक्ति धनशक्ति की महिमा के महत्व से सभी परिचित हैं। नवयुग का अवतरण करने में चौथी शक्ति उभरेगी प्रखर प्रतिभा। इसे भाव संवेदनाओं से भरी पूरी आदर्शवादी उमंग भी कह सकते हैं। यह सभी कुसंस्कारी नर नारियों को अनुप्राणित करेगी जो हम बदलेंगे युग बदलेगा का आदर्श प्रस्तुत कर रहे होंगे। मानव धर्म के रूप में समझदारी ईमानदारी जिम्मेदारी और बहादुरी को सार्वभौम मान्यता मिलेगी। इसका तत्वदर्शन नवयुग का धर्मशास्त्र बनेगा और व्यवहार में उतरेगा। परिवर्तन का प्रवाह युद्धोन्माद को शांत करेगा, शांति और सहयोग का वातावरण बनेगा। इन दिनों भी ईरान इराक कंपूचिया नामीबिया अंगोला पनामा निकारागुआ आदि क्षेत्रों में ठंडक आई है, मनोमालिन्य वाले क्षेत्रों में रुझान बदला है। यह क्रम चलता रहेगा। विज्ञान का उपयोग अब युद्ध साधनों की प्रतिस्पर्धा में न होगा। बड़े शहर और बड़े कारखाने अनुपयोगी सिद्ध हो रहे हैं, इनकी ओर से मुंह मोड़ते ही देहात कस्बों के रूप में बदलेंगे। कुटीर उद्योग पनपेंगे और ग्राम्य विकास की नई लहर चलेगी। विज्ञान पूंजी और कौशल के उसी केंद्र पर केंद्रित हो जाने से प्रदूषण शहरी घिचपिच अस्वस्थता और बेकारी जैसी प्रमुख समस्याओं का समाधान निकलता चला जाएगा। जनशक्ति अपनी प्रगति की आवश्यकताओं को अपने बलबूते संभव बनाएगी। अनुदानों अनुग्रहों की अपेक्षा न करके समयदान एवं अंशदान के सहारे इतने साधन जुटा लेगी जिनके सहारे सर्वतोमुखी प्रगति के लिए जिन आधारों को खड़ा किया जाना है उन्हें बिना किसी कठिनाई के जुटाया और बढ़ाया जा सके। समुद्री जल को पेय बनाना और सूर्य शक्ति को ऊर्जा के लिए प्रयुक्त करना, यह दो कार्य 21वीं सदी की प्रधान उपलब्धि होगी। रेगिस्तान उपजाऊ भूमि में बदले जा सकेंगे। समझदारी बढ़ने के साथ जनसंख्या वृद्धि का अनौचित्य सबकी समझ में आ जाएगा और अमर्यादित प्रजनन समाप्त हो जाएगा। आधी जनसंख्या नारी के रूप में उपेक्षित पिछड़ी और गई गुजरी स्थिति में इन दिनों पड़ी है। अगली शताब्दी में नर और नारी एक समान बनकर रहेंगे, फलतः जनशक्ति दूनी हो जाएगी। एकता और समता का औचित्य समझा और आग्रह किया जाएगा। संप्रदाय क्षेत्र भाषा जाति आदि के नाम पर चल रही विषमता घटती और मिटती जाएगी। एक धर्म एक जाति एवं एक भाषा जैसी मान्यताएं दिन दिन प्रबल होती जाएंगी। साहित्य संगीत और कला के अधिष्ठाता भावना और विचारणा को परिष्कृत करने की योजना बनाएंगे और उसे पूरी करेंगे। सबसे बड़ी बात होगी मनुष्य का चिंतन चरित्र और व्यवहार बदलेगा। उसमें मानवीय गरिमा के प्रति आस्था का समावेश होगा। मर्यादाओं और वर्जनाओं का सभी ध्यान रखेंगे। व्यक्तिवादी संकीर्ण स्वार्थपरता के प्रचलन के प्रति आक्रोश उभरेगा और उसके स्थान पर समाज निष्ठा एवं परमार्थ परायणता श्रेय संपादित करेंगे। भावी संभावनाओं में से यहाँ कुछ का ही उल्लेख है। स्थानीय परिस्थितियों और प्रथाओं के अनुरूप सब में अभीष्ट परिवर्तन चल पड़ेगा। इसे करेगा कौन? इसका उत्तर एक ही है कि जागृत मनुष्यों में से अधिकांश की महत्वाकांक्षाएं इसी दिशा में मुड़ेंगी कि वे युग परिवर्तन जैसे महान सुयोग में अपनी भूमिका अग्रगामी रखें और युग सृजेता के रूप में अपनी अनुकरणीय अभिनंदनीय ऐतिहासिक भूमिका निभाएं। सेवा और सृजन की उमंगें तूफानी गति से उभरेंगी, इसलिए सुधार परिवर्तन के आयोजन स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं एवं साधनों के अनुरूप ही होंगे। ऐसे देवमानवों का बाहुल्य होगा जो एक जीवंत सृजन संस्था के रूप में सोचने और करने में कटिबद्ध हुए दीख पड़ेंगे। इस परिवर्तन का वास्तविक श्रेय तो अदृश्य वातावरण के नियमता अभिनव व्यवस्थापक को मिलेगा, पर प्रत्येक क्षेत्र के सभी स्तर के मूर्धन्य श्रेय प्राप्त करेंगे। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्था संगठन भी उस श्रेय से वंचित न रहेंगे, अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप सभी यशस्वी बनेंगे। नवयुग की संभावनाओं को कपोल कल्पना समझने, उपहास उड़ाने, निष्क्रिय रहने वाले तो बहुत थोड़े होंगे। यूं अड़ंगे अटकाने और प्रतिगामिता बनाए रखने वाले दुराग्रहियों की भी सर्वथा कमी न रहेगी, पर अंततः जीतेगा सृजन ही। प्रकाश का ही अभिनंदन होगा और सतयुग की वापसी की सुखद संभावनाएं अगले दिनों साकार होकर रहेंगी। इस असंभव को संभव कर दिखाने वाले अग्रगामी अपनी प्रखर प्रतिभा का किस प्रकार, किस सीमा तक परिचय देते हैं, इसी को नवयुग की अद्भुत उपलब्धि के रूप में देखा, समझा और आंका जाएगा। प्रस्तुत पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने एवं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध है। प्रकाशक एस्टरिस्क 1988-90 तक लिखी पुस्तकें क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला पूज्यो गुरुदेव के जीवन का सार है, सारे जीवन का लेखा जोखा है। 1940 से अब तक के साहित्य का सार है। इन्हें लागत मूल्य पर छपवाकर प्रचारित प्रसारित करने की सभी को छूट है। कोई कॉपीराइट नहीं है। प्रयुक्त आंकड़े उस समय के अनुसार है। इन्हें वर्तमान के अनुरूप संशोधित कर लेना चाहिए। अपने अंग अवयवों से परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सूक्ष्मीकरण से पहले मार्च 1984 में लोकसेवी कार्यकर्ता समयदानी समर्पित शिष्यों को दिया गया महत्वपूर्ण निर्देश। यह पत्रक स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने सभी को वितरित करते हुए इसे प्रतिदिन पढ़ने और जीवन में उतारने का आग्रह किया था। यह मनोभाव हमारी तीन उंगलियां मिलकर लिख रही हैं। पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है उसे प्रस्तुत कलम, कागज या उंगलियां ही पूरा करेगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। इस विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है। लिख ही नहीं रहा है, वरन इसे पूरा कराने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां न रहें या कागज कलम चुक जाएं, तो भी कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह दैवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से न तो देखी जा सकती है और न दिखाई जा सकती है। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम है युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। उसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहाँ से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचें कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो, अपने कर्तृत्व में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे न रहे। काम क्या करना पड़ेगा, यह निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, हमसे जुड़े थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे, कहीं राय रत्ती भी कमी न पड़ने पाए। कार्य की विशालता को समझें, लक्ष्य तक निशाना न पहुंचे तो भी वह उस स्थान तक अवश्य पहुंचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए, सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ें। आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं भी कोई त्रुटि न रहे। विश्राम की बात न सोचें, अहनिश एक ही बात मन में रहे कि हम इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खपकर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र, दूसरों को बड़ा माने। स्वयंसेवक बनने में गौरव अनुभव करें। इसी में आपका बड़प्पन है। अपनी थकान और सुविधा की बात न सोचें। जो कर गुजरे उसका अहंकार न करें, वरन इतना ही सोचें कि हमारा चिंतन, मनोयोग एवं श्रम कितनी अधिक ऊंची भूमिका निभा सका, कितनी बड़ी छलांग लगा सका। यही आपकी अग्नि परीक्षा है। इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा व क्षमता घटने न दें। उसे दिन दूनी रात चौगुनी करते रहें। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, तब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृतकृत्य अनुभव करे। हम फूले न समाये और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम पंचायत में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। कहने का सारांश इतना ही है। आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राय रत्ती त्रुटि तो नहीं रही। आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया। अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। अपने कृत्यों को दूसरे से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं। कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है। आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, यह एक ही आशा, अपेक्षा और विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने न पाए जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। पम 0 श्रीराम शर्मा आचार्य, मार्च 1984। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। युग निर्माण का सत्संकल्प नित्य दोहराना चाहिए। स्वाध्याय से पहले इसे एक बार भावना पूर्वक पढ़ना और तब स्वाध्याय आरंभ करना चाहिए। सत्संगों और विचार गोष्ठियों में इसे पढ़ा और दोहराया जाना चाहिए। इस सत्संकल्प का पढ़ा जाना हमारे नित्य नियमों का एक अंग रहना चाहिए तथा सोते समय इसी आधार पर आत्मनिरीक्षण का कार्यक्रम नियमित रूप से चलाना चाहिए। 1. हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। 2. शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। 3. मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। 4. इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। 5. अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। 6. मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। 7. समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। 8. चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। 9. अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। 10. मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। 11. दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। 12. नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। 13. संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। 14. परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। 15. सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। 16. राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। 17. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। 18. हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।